पृष्ठ संख्या 169 अध्याय 9 16वीं सदी के संत कबीर और नानक प्रगतिशील विचारधारा के थे। समकालीनों में उनके कई समर्थक थे और उनके बाद की सदियों में भी उनके असंख्य अनुयायी थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर के अलावा 4 अन्य शिष्यों ने उनके कुछ भजन संग्रहित किए हैं, धन्ना पीपा और रैदास। पहले तीन के भजन सिखों के आदि ग्रंथों में सुरक्षित हैं, जबकि रैदास के उपदेश अलग से एकत्र करके प्रकाशित किए गए हैं। धन्ना जाति से एक जाट थे और कहा जाता है कि 1415 ईस्वी में हुआ था। वे राजपुताना के थे और वे वहां से रामानंद के शिष्य बनने के लिए बनारस गए। नाभाजी और प्रियदास ने उनके जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया। ये घटनाएं यह बताती हैं कि वे पहले मूर्ति पूजक थे। ऐसा लगता है कि बाद में उनमें एक परिवर्तन आया, क्योंकि वे कहते हैं, जब गुरु ने दैवी ज्ञान को मुझ में प्रविष्ट किया तो मैंने ईश्वर का ध्यान किया और अपने हृदय में मैंने यह स्वीकार कर लिया कि ईश्वर एक है। मैंने प्रेम और ईश्वर की सेवा को अपना लिया है और मुझे अच्छा लगा है। मैं तुष्ट और संतुष्ट हूँ और मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिसे हृदय में सृष्टि को आवित करने वाला प्रकाश भरा है। उसने उस ईश्वर को पहचान लिया है जिसे छला नहीं जा सकता। भक्त माला और उसकी टीका में गागरौन गढ़ के राजा पीपा के बारे में विस्तार से लिखते हैं और उसके जीवन की कई शानदार घटनाओं और उसके द्वारा दिए गए धर्माधिकारियों की जानकारी देते हैं। मेकालिफ ने ग्रंथ में मिले एक गीत का अनुवाद किया है, जो वैसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है जो दूसरे समकालीन संतों में पाई जाती है, अर्थात ईश्वर मूल तत्व है, गुरु ईश्वर तक पहुँचने का साधन है और पूजा अंतर मन से होना चाहिए। साई एक नाई था। वह बांधवगढ़, जो वर्तमान रीवा है, के राजा के दरबार में रहता था। कहा जाता है कि वह राजा का आध्यात्मिक गुरु बन गया। उसके बारे में नाभाजी एक कहानी बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि संतों को भगवान पर निर्भर रहना चाहिए और उसकी सहायता के लिए ईश्वर तत्पर रहता है। रैदास चमड़े का काम करते थे और बहुत नीची जाति के थे। उनका जन्म बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। वे धार्मिक व्यक्तियों और संतों के भक्त थे और जो कुछ भी उन्हें पिता से प्राप्त होता था उसे वे संतों की सेवा में खर्च कर देते थे। इससे उनके पिता उनसे नाराज हो गए और उन्हें घर से निकाल दिया। वे अपनी पत्नी के साथ एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहने लगे और जूतों की मरम्मत करके अपनी गुजर बसर करने लगे और भक्ति में लीन हो गए। लोग उनके सादगीपूर्ण जीवन और संतुष्टि से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि एक राजपूत रानी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। रैदास के भजनों में विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना का स्पंदन है। उन्होंने प्रकृति, ईश्वर की सत्ता और मनुष्य तथा जगत से उसके संबंधों के बारे में ऊंचे दार्शनिक सिद्धांत नहीं बघारे। उनके प्रमुख सिद्धांत कबीर के सिद्धांतों से अलग नहीं थे और वे कबीर के समान ही हिंदू धर्म और इस्लाम की एकता को प्रकट करने के लिए रेखता का, यहाँ तक कि फारसी भाषा का तथा सूफी शब्दों का उपयोग करते हैं। वे ईश्वर को सभी का परमेश्वर और स्वयं का रूप मानते हैं। वे कहते हैं, निश्चल निराकार अजीव अनुपम निर्भय गमी गोब्यंदा अगम अकोचर अशिर अतरक निर्गुण अति अनंदा, अर्थात गोविंद अचल निराकार अजन्मा अनोखा भयहीन असीमित अगोचर और तर्कातीत अविभाज्य निर्गुण परमानंद है और सब में हरि है, हरि में सब है, अर्थात हरि सब में है और सब हरि है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अर्थात तुम मैं हो और मुझ तुम में और मुझ में जो भेद है वह स्वर्ण कलश के जल के और लहर के समान है। इस प्रकार वह एक है तथापि वह अनेक है। एक अनेक अनेक एक हरि करौ कौण विधि दूजा, अर्थात एक अनेक है और अनेक एक हरि है। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि कोई दूसरा भी है, और वह एक है और केवल माया से दो है। जा राम जग जग जानई भ्रमि भूले रे भाई, अर्थात हे भाई जो लोग ईश्वर में राम को देखते हैं वे गलती पर हैं। रैदास जगत को ईश्वर का खेल मानते हैं और इस मत के हैं वह माया है या किसी भी रूप में ध्यान देने योग्य नहीं है। बाजी गर्षव रहनी रहेंजे बाजी का मरम ईब जाना, बाजी झूठ साच बाजीगर जाना मन पतियाना। अर्थात वह बाजीगर के समान उसकी व्यवस्था करता है, कोई उसके खेल का रहस्य नहीं जानता। खेल झूठा है, केवल खिलाड़ी ही सच्चा है, यह जानने पर मस्तिष्क संतुष्ट हो जाता है। आगे थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया, थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा। अर्थात शरीर खाली है, माया खाली है, बिना हरि के तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। रैदास को उसकी कृपा पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि अजा मेल जग गज गणिका तारी काजी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुमति मुकति किए क्यों न तीरे रैदास रे। अर्थात क्या परमात्मा वह अजामिल की हाथी की वेश्या की सहायता करने नहीं आया? यदि उसने उनकी बेड़ियां तोड़ी तो निसंदेह वह उसके साथ भी वैसा ही करेगा। तथापि उसके रुख में एक सुखद सम्मति है। तै हम बांधे मोह पासी में, हम तू प्रेम जेवरियां बांधयो, अपने छूटन के जतन करो हम छूटे तू अपराधयो। अर्थात तुमने मुझे मोह की श्रृंखला से बांध दिया है, मैंने तुम्हें प्रेम की रस्सी से बांध लिया है। मैं तो स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो तुम्हारी भक्ति कौन करेगा। पूर्ण समर्पण और विनम्रता का दृष्टिकोण उनके लिए सामान्य बात है। यार माँ एक तू दाना तेरा आदु वैष्णव, तू सुल्तान सुल्ताना बंदा सकति रजाना, मैं वेदियानत बद नजर दे जरबंद बर सुरदार, बेअदब बद बखत बीराम बेअकिल बदकारा, मैं बेदियानत बद नजर दे जबरन जरबंद बरखुरदार, बेअदब बद बखत बीराम बेअकली बदकार, मैं गुनहगार गरीब गाफिल कम दिलाम करतार, तू दर कदर दरिया जिहावन मैं हेसिया हुसियार, यहुतन हस्त यहुतन हस्त जास्त जाराब जातिर अंदेशा विसियार, रैदास दासही डोल साहिब देहु अब दीदार। अर्थात हे राम केवल तुम ही बुद्धिमान हो, तुम ही अनंत हो, तुम सुल्तानों के सुल्तान हो, मैं तुम्हारा शिकस्त बंदा हूँ, मुझमें शिष्टाचार नहीं है न भाग्य है, मैं निरर्थक मूर्ख हूँ और दुर्गुणी हूँ, मैं पापी हूँ गरीब अज्ञानी कायर और कलुष हृदय हूँ। तुम ताकतवर हो और मुझे सागर पार कराने की तुम में क्षमता है, मैं लोभी हूँ और चालाक हूँ, मेरा यह शरीर जीर्ण और खंडित है और मेरा मस्तिष्क कई संदेहों से भरा है। रैदास दास साहिब से याचना करता है कि साहिब मुझे अपना दीदार कराने की कृपा करें, और इसलिए वे उसे अपने हृदय की गहराइयों से बुलाते हैं, त्राहि 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 त्रिभुवन पावन, अर्थात हे त्रिलोक के स्वामी मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। अतः सभी बाह्य कर्म कांडों को जैसे तीर्थ व्रत सिरमुड़ाना, मंदिरों में गाना नाचना, मूर्तियों को पत्ते चढ़ाना, त्याग कर स्वयं को ईश्वर में खोकर एक ईश्वर की भक्ति अपनाना जरूरी है। जैसे नदी समुद्र अपना अस्तित्व समुद्र में खो देती है, यद्यपि जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किए हुए कही रहे दास चमारा। अर्थात मेरी जाति भी छोटी थी, कर्म भी छोटा था और व्यवसाय भी छोटा था, लेकिन हे ईश्वर मुझ छोटे को भी तुमने ऊंचा बना दिया है। कबीर के कई शिष्य थे, उन्होंने उनके संदेश को पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण में फैलाया। उन्होंने पंथ की 12 शाखाएं स्थापित की और प्रत्येक में तुरंत के बाद वाले शिष्य को प्रमुख बनाया गया। कुछ शाखाएं तो नाम मात्र की ही थी, और जहां उन्हें रोपा गया था वहां उनकी जड़ें नहीं जमी, किंतु अन्य से महत्वपूर्ण पंथ उत्पन्न हुए। उनके तुरंत बाद के श्रुत गोपाल दास बनारस में उनके उत्तराधिकारी हुए, और मगहर जगन्नाथ और द्वारिका में उन्हें मान्य किया गया। भग्गुदास को बीजक का संकलन करता माना जाता है। धर्मदास उन बहुत सी कविताओं के रचयिता थे जिनमें कबीर को प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया गया है। जीवनदास संभवतः प्रसिद्ध सतनामी पंथ के संस्थापक थे। कमाल के अनुयायी पश्चिम भारत में थे। कमाल की आदि ग्रंथ में इस निंदात्मक पंक्ति से याद किया गया है, बूढ़ा बस कबीर का उपजा पूत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, अर्थात कमाल जैसा पुत्र होने से कबीर का वंश डूब गया। अन्य शिष्यों का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। बाद की पीढ़ी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिष्य हुए दादू दयाल जी। दबिस्तान के अनुसार दादू दयाल एक धुनिया थे और मारवाड़ के नारायणा नामक गांव के और अकबर के समय हुए। दादू जाति के संबंध में विल्सन दबिस्तान के कथन को मानते हैं, किंतु यह जोड़ते हैं कि वे अहमदाबाद में पैदा हुए, जहां से 37 साल की उम्र में नारायणा चले गए और वहां अपने जीवन के अंत तक रहे, किंतु फरकुहर और ट्रेल कहते हैं कि उनके माता पिता ब्राह्मण थे और उनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, किंतु सुधारक इनसे सहमत नहीं हुए और कहते हैं कि वे मोची थे और उनका पारिवारिक धंधा मोट कुएं से पानी खींचने के लिए मोट बनाना था। उनका पहला नाम महाबली था। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वे सांसारिक गतिविधियों से मुक्त हो गए और वे कमाल के शिष्य हो गए। ट्रेल अपने मत के प्रमाण के रूप में नीचे लिखी कविता प्रस्तुत करते हैं। साचा समर्थ गुर मिल्या तिन तत दिया बताई, दादू मोटा महाबली घटगत मथी करी खाई। अर्थात मुझे सच्चा और शक्तिशाली गुरु मिल गया जिसने मुझे हकीकत का पाठ पढ़ाया। दादू तो मोट है, महाबली तो वह जहाज है जिसने दक्खन को मथा और उसे खाया। दादू ने अपने जीवन का अधिकांश राजपुताना में बिताया और उन्होंने अजमेर दिल्ली आमेर और अन्य स्थानों का भ्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अकबर से भेंट की। उनकी मृत्यु 1603 में नारायणा में हुई। उनकी कविताएं लगभग 5000 हैं जो अध्याय में बटी हुई हैं और प्रत्येक अध्याय एक प्रमुख धार्मिक प्रश्न के बारे में है। उनकी भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिश्रण है। कुछ कविताएं पंजाबी में हैं और बहुत सी रेखता और अशुद्ध फारसी में हैं। अशुद्ध फारसी में लिखी कविताओं में से एक दो के नमूने यहाँ दिए जा रहे हैं। वे मिहर गुमराह गाफिल गोस्त खुर्दानी वेबदिल बदकार आलम हयात मुर्दानी। इसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है, लोग निर्दयी हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, किसी की सुनते नहीं, मांसाहारी हैं, हृदयहीन हैं, दुष्कर्मी हैं और मुर्दों की तरह रहते हैं। और कुल आलम यके दीदम अरवाह अखलास बद अम्ल बदकार दुई पाक यारा पास। जिसका अर्थ है उसने सारे ब्रह्मांड को एक माना और मित्र के साहचर्य में शुद्ध आत्माओं ने अपने दुष्कर्म और द्वैधता के पाप धो लिए। और आगे एक पूरी कविता इन पंक्तियों से शुरू होती है। मौजूद खबर मबूद अरवाह खबर वजूद मकाम ची चीज अस्त दालनी सुजूद। इसका अनुवाद इस तरह किया जा सकता है, जिसका अस्तित्व है उसका पता है, जिसकी प्रशंसा होती है उसका पता है, आत्माओं का पता है, उस जीव का स्थान क्या है जिसके सम्मुख झुकाना आवश्यक है। दादू के अनुसार जीव का स्थान यह है, जहाँ नब्ज का आधिपत्य है और जहाँ दंभ क्रोध अहम दोहरापन लोभ उदंडता मौजूद है, वहाँ सच्चाई का नाम भी नहीं होता। आत्माओं का स्थान यह है, जब प्रेम पूजा आज्ञाकारिता एकता शुद्धता दया प्रेम सही अच्छाई उपस्थित है तब वहाँ सच्चाई होती है। माबूद का स्थान यह है, वहाँ एक है सौंदर्य का सुंदर दृश्य विस्मयकारी है, मस्ती का प्याला अद्भुत चीज है। पशु का चरण वह है जब मनुष्य अपने रास्ते से हट जाता है। पहला कदम है शरीयत में से बंधना, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अच्छे बुरे का ज्ञान लेना और उचित और अनुचित की समझ रखना। उसके उपरांत इसको पूरा करने के बाद यह जरूरी है कि संसार त्याग दिया जाए और प्रतिदिन प्रतिक्षण परमेश्वर का स्मरण किया और प्रेमी को प्रेम किया जाए और दुख का अनुभव किया जाए और शिकायत की जाए और रोया जाए। इसके बाद मारिफत की स्थिति आती है, जिसमें यह जाना जाता है कि पानी अग्नि और अर्श यानी आकाश कुर्सी ये सभी सुभान के रूप हैं, जिसने अग्नि के गुण ले लिए हैं। वे कहते हैं सत्य मिल गया है, मैंने प्रकाश को देखा है, वह चीज मिल गई है जो यार का दर्शन है। आदम की आत्माएं वजूद का वजूद है। मैंने साफ तौर से कह दिया है कि मैंने कौन साल्य हासिल कर लिया है। मुरीदों के आत्मा को पीरों ने माशूक के रास्ते के बारे में खबर दे दी है। सच्चे मुसलमान का जो वर्णन दादू ने दिया है वह बताता है कि वे धर्म के पूर्वाग्रहों से कितना ऊपर उठे और धर्म की सच्ची आंतरिकता पर कैसे जोर दिया। वे कहते हैं उसकी मौजूदगी का सरोवर दादू हृदय में है और वहां मैं अपना पूरा प्रक्षालन करता हूँ। अल्लाह के सामने प्रक्षालन करने के बाद मैं वहां अपनी प्रार्थना करता हूँ। दादू अपने शरीर को अपनी मस्जिद बनाता है। वह अपने दिमाग में जमात के 5 सदस्यों को और मुल्ला इमाम को पाता है। अवर्णनीय ईश्वर स्वयं उसके सामने है और वहां वह सजदा और अभिवादन करता है। इस प्रकार दादू बहुत एकाग्रता से अल्लाह के सामने उठता है और स्वयं अर्श के ऊपर उस जगह को जाता है जहां रहमान रहता है। इबादत करने वाला दादू यह हर रोज मृत्यु पर्यंत करता है और फिर वह मालिक के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और न तो उसको छोड़ता है और न जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दादू को अपने पूर्ववर्ती संतों से सूफी संप्रदाय का अधिक ज्ञान था। शायद इसीलिए वे कमाल के शिष्य थे जिनका चिंतन के इस्लामी और तरीकों की ओर दूसरों की तुलना अधिक झुकाव था। संभवतः इसलिए कि पश्चिम भारत के अहमदाबाद और अजमेर के सूफियों का प्रभाव पूर्व के संतों की तुलना में ईश्वर के खोजियों हिंदुओं और मुसलमानों पर उन संतों से ज्यादा प्रभाव था जो पूर्व में थे। कुछ भी हो, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव यह हुआ कि दादू दयाल हिंदू मुस्लिम एकता के घोर समर्थक बन गए। वे बारंबार यह भावना प्रकट करते हैं कि सब घटी एक ही आत्मा, क्या हिंदू मुसलमान, और अलह राम छुटी गया भ्रम मोरा, हिंदू तुरक भेद कछु नाही, देश दर्शन तोरा। अर्थात हे अल्लाह, राम मेरा भ्रम हट गया है, हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, और अलक इलाही एक तू, तू ही राम रहीम, तू ही मालिक मोहना, केशव नाम करीम। अर्थात एक अदृश्य इलाही तुम हो, तुम राम और रहीम हो, तुम खूबसूरत मालिक हो, केशव और करीम तुम्हारे नाम हैं। और वे पूछते हैं कि दादू ब्रह्मा विष्णु महेश का कौन पंथ सगुर देव, साई सृजन हार तू, कहिए अलख अभेद। दादू महमूद किसके दीन में, जब रायल किस राह, इनके मुर्शिद पीर की, कहिए एक अलाह। दादू ये सब किसके में, रहे यहूं मेरे मन माही, अलख इलाही जगत गुर, दूजा कोई नाही। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का पंथ क्या है, मुहम्मद का धर्म क्या है, और जिब्रिल का रास्ता क्या है। एक हल्लह उनका पीर और मुर्शिद है। दादू अपने हृदय में जानता है कि वे किसके भक्त थे। अदृश्य इलाही दुनिया का गुरु है और उसके बाजू में कोई अन्य नहीं है। और अंत में दादू कहते हैं कि दो भाई हाथ और पांव हैं, दोनों दो कान हैं, दो भाई दो आंख हैं, हिंदू और मुसलमान। कर्मकांड और स्वरूप, पुरोहित जाति, मूर्ति पूजा, अवतार, तीर्थ अनुष्ठान के बारे में वे वैसे ही विचार रखते हैं जैसे कबीर के थे। उनके लिए भी केवल ईश्वर ही अनिवार्य है और ईश्वर पर्याप्त है। हर केवल एक अधरा, सो तारण तिरण हमारा, न मैं पंडित पढ़िपुनि जानऊ, ना कछु ज्ञान विचारा, ना मैं आगम ज्योतिंग जानऊ, ना मुझ रूप सिंगारा, ना तप मेरे इंद्री निग्रह, ना कुछ तीरथ फिरना, देवलन पूजा मेरे नाही, ध्यान कछु नहीं धरना, जोग जुगति नहीं कछु मेरे, ना मैं साधन जानऊ, बोसत मुलि मेरे नाही, ना मैं देश बखानऊ, मैं तो और कछु नहीं जानऊ, और कहूं क्या कीजे, दादू एक गलित गोविंद, सो इही विधि प्राण पति जय। ईश्वर संसार और मनुष्य के बारे में उनके विचार पूर्ववर्ती संतों से अलग नहीं है। वे ईश्वर के एक होने पर जोर देते हैं और ईश्वर को उसके भावतीत और सर्वव्यापी होने के दोहरे पहलू में देखते हैं। उनके लिए ईश्वर एक है, अपरिवर्तनीय है, अमर है और अबूझ है। वह चमक दीप प्रकाश संपूर्णता है, वह सभी जीवों के हृदय में है। दादू मैं ही मेरा अरस, मैं ही मेरा थान, मैं ही मेरी ठौर, मैं आप कहें रहमान। अर्थात मैं अपने भीतर स्थित हूँ, मैं अपने लिए घर हूँ, मैं आसमान में हूँ, मैं स्वयं का सहारा हूँ, ऐसा कृपालु सृष्टिकर्ता कहता है। और संपूर्ण प्रकृति उसका ही रूप है, क्योंकि परमात्मा सभी के भीतर है, वही सृष्टिकर्ता है और ईश्वर है, जिसने एक शब्द से सभी की रचना कर दी, और जैसे ही वह चाहता है वैसे ही शून्य से सृष्टि की संरचना हो जाती है और फिर से शून्य में चली जाती है। मनुष्य जब तक ईश्वर से अलग रहता है वह एक पापी जीव रहता है। उसकी मुक्ति इस आवरण को चीरने में है, यह अनुभव करने में है कि सभी अनन्यता और द्वैतता, इंद्रियों और सुख का संसार और दुख एक माया है। वे मरुस्थल में मृग मरीचिका की तरह हैं, जिनके पीछे प्यासा व्यक्ति निरर्थक भागता है। मुक्ति का एक रास्ता है केवल ईश्वर को जानना और उससे प्रेम करना। एक और तरीका है कि ईश्वर में रहने के लिए स्वयं के लिए मर जाना है। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है उसे अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके सामने भयंकर बाधाएं आएंगी। वह थकान और बीमारी का अनुभव करेगा और पीड़ा से पागल हो जाएगा। वह चिल्लाएगा, मेरी आत्मा को बहुत आघात पहुंचा है क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। हे ईश्वर, मैं यह कष्ट नहीं सह सकता, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। किंतु यदि वह लगन के साथ जुटा रहेगा तो बादल छट जाएंगे और सूर्य चमकने लगेगा और प्रकाश उसकी आत्मा को प्रकाशित करेगा और वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाएगा, राम राइमो कौ अचिरज आवई, तेरा पारन कोई पावई, ब्रह्मा दिक्सन कादिक नारद नेति नेति जे गावई, सरणी तुम्हारी रहई निसबासुरी तिनकौ तू न लखावई। अर्थात हे राम, मेरे भगवान, मेरे मैं चमत्कित हूँ, कोई भी तुम्हारा पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा सनक और नारद सभी तुम्हें नहीं देख पाए। मैं जो कि क्षुद्र निम्न और अल्प बुद्धि हूँ, मुझे दर्शन दो। दादू का मानना था कि मनुष्य एक ही जीवन काल में जन्म और मृत्यु के संपूर्ण चक्र से होकर गुजर जाता है। वे कहते हैं, दादू 84 लाख जीव की पर कीरति घट माही, अनेक जन्म दिन के करें कोई जाने नाही। अर्थात 84 लाख योनियों का स्वभाव तुम्हारे भीतर है। एक दिन में कई जन्म हो जाते हैं किंतु कुछ ही उसे समझ पाते हैं, और आत्मा में जितने बदलाव होते हैं उतने ही जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। परमपिता सृष्टिकर्ता ही पुनर्जन्म से मुक्ति देता है। जीव जन्म जाणो नहीं, पलक पलक में होई, 84 लख भेगवई, दादू लखै न कोई। अर्थात आत्मा अपने जन्म के बारे में नहीं जानती। ये जन्म क्षण क्षण में होते हैं, 84 लाख योनियों से होकर जाना पड़ता है, किंतु डरती नहीं। दादू सूकर स्वान सियाल सिंह श्रप घट माही, किडी कुंजर जीव सब पंडित जाने नाही। अर्थात सुअर कुत्ते सियार बाघ और सर्प हृदय में रहते हैं, हाथी और कीड़े भी रहते हैं, किंतु पंडित को उनका पता नहीं होता। मनोवैज्ञानिक संशोधन या आध्यात्मिक जन्म और मृत्यु की इस श्रृंखला को नष्ट करने से ही मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकता है। दादू कहते हैं कि गुरु भक्त का ग्वाल है और वह चाबुक है जो मन घोड़े को नियंत्रण में रखता है। गुरु वेद और कुरान से भी महान होता है क्योंकि उसके जरिए ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रकाश का घर मिलता है, किंतु सच्चा गुरु पाना कठिन होता है। उसके लिए दादू परामर्श देते हैं कि लोगों को चिड़ियों, जानवरों और वन के देवता को अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो इन सब में है। दादू पूर्ण निष्क्रियता पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं, दादू उदिम अवगुण को नहीं जे कर जाने कोई, उदिम में आधार है जे साई सेती होई। अर्थात उद्यम बुरे प्रभाव नहीं पैदा करता, उसके लिए जो उसे जानता है उद्यम में आनंद है, किंतु यह केवल ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए। दादू ने जो पंथ स्थापित किया उसकी मुख्य पीठ नारायणा में है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। वहां वे एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं जिसमें दादू पंथियों को उस महान व्यक्ति की याद में एकत्र होने का मौका मिलता है, जिसने प्रेम के धर्म में धर्म और जाति के सभी भेदभाव को डुबाने का प्रयास किया था। खाकी पंथ का उदय दादू के अनुयायियों के एक समूह से ही हुआ। इसके संस्थापक का प्रतिष्ठित नाम कल है, जिसका उल्लेख नाभा जी ने पहारे श्री कृष्ण दास के शिष्यों में किया है, किंतु उनके बारे में और ज्यादा ज्ञात नहीं है। मुलुक दास को विल्सन किल का शिष्य बताते हैं, किंतु संत बानी पुस्तक माला के संपादक उन्हें द्रविण संत बिट्ठल दास का शिष्य मानते हैं। ये बिट्ठल दास कौन थे यह सुनिश्चित करना कठिन है। नाभाजी एक बिट्ठल दास का उल्लेख करते हैं जो रैदास के पंथ के थे और जो रामानुज के श्री संप्रदाय के थे, और रायस कहते हैं कि बिट्ठल दास 16वीं सदी के कन्नड़ कवियों में एक वैष्णव गायक थे। मलुक दास का जन्म 1574 में अकबर के शासन के समय हुआ था और 108 साल की लंबी आयु के बाद उनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद जिले में कड़ा उनकी जन्म स्थान है। उन्होंने विवाह किया और उनकी एक बेटी हुई और उन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसमें पूरी तरह साधारण लोग हैं और साधु कोई नहीं है। कहा जाता है कि उनके पंथ में पंथ के आम कड़ा जयपुर, इस्फहाबाद, मल्तन, पटना, कटक, सीताकयल, कोल्हापुर, नेपाल और काबुल में है। मलुक दास ने उन्हीं धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जो उनके समय तक पूरे भारत में प्रचलित हो चुके थे। वे धर्म के बाह्याडंबरों, तीर्थयात्रा, मूर्ति पूजा, अच्छे काम और अन्य की निंदा करते हैं। वे शिक्षा देते हैं कि सच्चा धर्म आंतरिक आस्था में है, कि माया मनुष्य की शत्रु है और ईश्वर का नाम ही उससे बचने का एकमात्र मार्ग है, कि संसार परिवर्तनशील है और सांसारिक बंधन निरर्थक है, कि मनुष्य धूल से उत्पन्न हुआ और धूल ही में परिवर्तित हो जाएगा, कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में निष्ठा नहीं रखते वे संसार के कुत्ते हैं, कि मुक्ति स्वयं को जानने, घमंड और अहंकार का दमन करने में, विषयाशक्ति के नियंत्रित करने में, गुरु पर विश्वास रखने और ईश्वर को प्रेम करने में है। सच्चे दरवेश की उनकी यह परिभाषा है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। मलुक दास उसे सच्चा योगी मानता है। उन्होंने भी धर्म की एकता और हिंदू और मुसलमानों की एकता का पाठ पढ़ाया। वे कहते हैं, माला का धागा और तस्बीह कहाँ है, अब जागो और उन पर आश्रित मत रहो। कौन काफिर है और कौन मलिक्ष है, संध्या और नमाज को एक ही मानो। वह अच्छे और बुरे कामों का हिसाब रखता है और खाता निकाल कर वहाँ भेजता है जहाँ के वह योग्य होता है। मलुक दास, तुम गलती क्यों कर रहे हो? राम और रहीम एक ही ईश्वर के नाम है। सुंदर दास दादू के शिष्य थे। उनका जन्म 1596 ईस्वी में राजपुताना में जयपुर के पास देवसा में एक बनिया परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जब सुंदर दास की आयु 6 साल की थी तब दादू देवसा आए थे। उन्होंने बच्चे को देखा और उसके सुंदर चेहरे से प्रभावित हुए थे। तब से बच्चा सुंदर के नाम से जाने लगा और अपने गुरु दादू के साथ नारायणा में रहने लगा। सुंदर जल्दी ही एक संत और कवि की अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हो गए, किंतु 1603 ईस्वी में दादू के निधन के बाद वे नारायणा छोड़कर घर लौट आए। नारायणा में कुछ समय बिताने के बाद वे बनारस गए और वहां 30 साल की आयु तक अध्ययनरत रहे और फिर राजपुताना लौटे और दादू के द्वारा सिखाए भक्ति के धर्म का प्रचार करने के लिए अपने सह शिष्यों प्रागदास और रज्जब के साथ काम करने लगे। वे फतेहपुर शेखावटी में बस गए और नवाब अलीफ खान और उनके बेटे दौलत खान और ताबीर खान के साथ उनकी मित्रता हो गई। नवाब स्वयं हिंदी का कवि था और उसने सुंदर दास की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की। बाद के सालों में उन्होंने यात्राएं की और राजपुताना और पंजाब के कई स्थानों का भ्रमण किया। उनकी मृत्यु 1689 में हुई। सुंदरदास संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने फारसी और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषाओं का भी अध्ययन किया। उनकी कृति सुंदर विलास 24 अध्यायों में विभाजित है। इसके कुछ अध्यायों में हिंदुओं की 6 दार्शनिक पद्धतियों तथा कर्म और ज्ञान मार्ग का विवरण है और मनुष्य की मुक्ति के लिए उन्हें अपर्याप्त बताया गया है। बाद के भागों में वे दादू की शिक्षाओं का विवरण देते हैं, किंतु अपनी अधिकतर दलीलें और दृष्टांत पूर्णतः हिंदू स्रोतों से लेते हैं। अन्य धार्मिक नेताओं के विपरीत सुंदरदास सुसंस्कृत व्यक्ति थे और अच्छे कवि थे, किंतु उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक नहीं था और उनका आध्यात्मिक अनुभव भी उतना संपन्न नहीं था जितना उन धार्मिक नेताओं का था। नीचे लिखी साखियों में वे मनुष्य की आत्मविस्मृति का वर्णन करते हैं। सुंदर इंद्री स्वाद सौ अतिगति बांधयो मोह, मीन न जाने बावरी निगल गयो सठ लोग, मरकट मूठ न छाड़ई बंधयो स्वाद सौ जाय, सुंदर मूठ न छाड़ई बंधयो स्वाद सो जाय, सुहा पकरी नली रहियो बहस कछु पकरियो नाही, एस सुंदर आपु सौ परियो पिंजरा माही, मिलिकरी याजड़ देह सौ रहियो तिसौही होई, सुंदर भूलो आपु कौ सुधि बुधि रही न कोई। अर्थात जैसे कि मछली लोभ के वशीभूत होकर मांस खा जाती है और कीड़े और लोहे की बंसी में भेद नहीं कर पाती, वैसे बंदर बर्तन में अपना हाथ डालकर मुट्ठी को जोर से बंद कर लेता है और स्वाद के लोभ से उसे नहीं खोलता। जैसे तोता नारियल में अपनी चोंच फंसा लेता है और उसमें लटकता रहता है और अपनी उत्कंठा के कारण स्वयं को परेशानी में डाल देता है, उसी प्रकार अपनी देह से जुड़कर विषय भोग में गिर जाता है और आनंद की इच्छा के वशीभूत होकर वह यह भूल जाता है कि वही ईश्वर है।